मेरे आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 11 अक्टूबर 2018 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन एक नौजवान साथी का जिन्होंने एकेडमी की 15 दिन की क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इन दोस्त का नाम है लिखम सिंह जो पटियाला पंजाब से हैं। तो लिखम आपका मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों कुछ बातें मुझे अभी अक्टूबर में जो स्टूडेंट क्लास के लिए आ रहे हैं उनसे कहनी है और बहुत ही थोड़ा सा वक्त मैं इसके लिए लूंगा। कुछ लगातार निर्देश मैं आप सबको दे रहा हूं दोस्तों। अब चूंकि बहुत कम वक्त बचा हुआ है तो कम वक्त के दौर में खासकर जो निर्देश दिए जाने चाहिए या जो अपेक्षा एकेडमी आपसे करता है उसके बारे में अब मुझे थोड़ी जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंसी में आप सबसे बात करनी पड़ेगी। आज मैं आपसे केवल ये कहने जा रहा हूं कि आपको यहां खासकर क्लासेस को ध्यान में रखते हुए क्या क्या चीजें लानी हैं, आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है पढ़कर आनी है ये मैं आपको बता चुका हूं। अब जो चीजें आपको लेकर आनी हैं आप उसे ध्यान से सुन लें। पहली बात यह कि आपके हाथ में बकायदे रजिस्टर कॉपी डायरी जो भी हो वो होनी चाहिए और अच्छा खासा पेन है ना, ताकि आप क्लासेस के कुछ पॉइंट्स समय समय पर नोट कर सके। तो वह तो आप लेकर आएंगे ही, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हें थोड़ा सा ध्यान से सुन लें। आपके पास यूपीएससी का सिलेबस होना चाहिए यानी सिविल सर्विस का सिलेबस अगर हो तो बेहतर है। और मैं जो सिलेबस की बात कर रहा हूं उसका संबंध केवल आपके जनरल स्टडीज से है, प्री का जनरल स्टडीज और मेंस का जनरल स्टडीज, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के नहीं। अगर आप लेकर के आते हैं तो कोई आपकी चेकिंग नहीं की जाएगी, पूछा नहीं जाएगा कि आप क्यों लेकर के आए हैं, लेकिन जनरल स्टडीज प्री और मेंस का सिलेबस आपके पास होना ही चाहिए। इसके साथ ही साथ अगर आप पिछले कम से कम 2-3 साल के अनसॉल्व्ड पेपर ला सकेंगे तो बहुत अच्छा होगा, अनसॉल्व्ड पेपर राइट। कोशिश कीजिए कि ये आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में हो। देखिए ये सब चीजें आप स्मार्टफोन पर भी ला सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि जब मैं कहूं कि आप इस क्वेश्चन को देखिए तो फिर आप स्मार्टफोन निकालने लगेंगे तो फिर पॉकेट में हाथ डालेंगे फिर ऑन करेंगे, आप सब क्लास में बैठे हुए होंगे, खुसुर फुसुर होने लगेगी, आपके मोबाइल जलने लगेंगे, अनावश्यक रोशनी आंखों में पड़ने लगेगी। तो इससे ज्यादा अच्छा होगा कि आप सब अनसॉल्व्ड पेपर के प्रिंटेड फॉर्म लेकर आए। और वैसे भी इसका प्रिंटेड फॉर्म आपकी टेबल पर स्टडी टेबल पर होना चाहिए जिस पर मैं इतना ज्यादा जोर देता हूं। और ये आपको बिना बताए डेली क्लास में लेकर आना है, मतलब ये नहीं कि आपको बताया जाएगा कि कल आप लेकर आए, जैसे कि आप डायरी रोज लेकर के आएंगे कॉपी लेकर के आएंगे, ठीक इसी तरह से अनसॉल्व्ड पेपर और सिलेबस आपको रोज लेकर आने हैं राइट। आखिरी बात जो है फ्रेंड्स कि जनरल स्टडीज के जो 4 बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं कौन से, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये 4 मेजर सब्जेक्ट्स हैं। इसमें हिस्ट्री के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि आपको जो फ्रीडम मूवमेंट है उसके बारे में पढ़कर आना है। फ्रीडम मूवमेंट जिसकी शुरुआत 1857 के आंदोलन से हो जाती है या कह लीजिए 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से हो जाती है, बेहतर होगा कि आप पढ़ करके आ जाएं। और अगर नहीं पढ़ करके आते हैं तो रास्ते में सफर में पढ़ लें। वैसे सफर का दूसरा उपयोग आपको करना चाहिए, क्या उपयोग करेंगे मैं बाद में बताऊंगा, अदरवाइज आप किताब लेकर के आ जाएं। लेकिन एक बार पढ़ करके आएंगे तो वो सबसे अच्छी बात होगी। तो इतिहास की किताब आपको लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो 3 सब्जेक्ट हैं ज्योग्राफी हिस्ट्री और जब मैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस जो मैं कह रहा हूं उसे आप कॉन्स्टिट्यूशन समझ लीजिए संविधान, इन तीनों पर कोई भी किताब जो आपके पास हो अपनी पसंद की वो ले आए। मैं नहीं कहूंगा कि आप एनसीईआरटी ही लेकर के आए या आप फलाने राइटर की ही लेकर के आए, जो भी आपके पास हो वो लेकर के आ जाए। हो सकता है कि बीच बीच में मैं कुछ आपसे कहूं कि आप ऐसा करके देखें और उसमें आपको इनकी जरूरत महसूस हो। तो 3 सब्जेक्ट की बात मैंने की है मित्रों, मैं रिपीट कर देता हूं, ज्योग्राफी की कोई एक किताब हो सिंपल सी, इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी करिए या इकोनॉमिक्स ज्यादा अच्छा होगा उसकी एक किताब हो, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और उसके साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन। इनकी छोटी छोटी पतली पतली किताब भी होगी तो वो चलेगी। मत सोचिए कि आपको कोई बहुत भारी भरकम और बहुत ही अच्छे राइटर की किताब चाहिए, नॉट एट ऑल। मुझे बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज की किताबों की जरूरत है। तो ये कुछ बातें आप सबसे शेयर कर कहनी थी। अब मैं आता हूं मुख्य विषय पर। मुख्य विषय के तहत दोस्तों आज हम लोग कॉरपोरेट प्रशासन पर बात करेंगे, कॉरपोरेट प्रशासन पर। और लेकिन इससे पहले आइए थोड़ी सी दूसरी खबरों को देख लेते हैं। न्यूज में आपने राफेल सौदा को लेकर के देखा कि वह सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है। अब हम सुप्रीम कोर्ट के मामले को थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, जो रक्षा सौदे होते हैं, रक्षा सौदे बहुत ही ज्यादा, चूंकि राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित होते हैं, तो बहुत ही गुप्त होते हैं। वो एक तरह से यूं कह लीजिए कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत आप उनकी सभी की जानकारियां नहीं मांग सकते हैं, और वो दुनिया के सभी देशों में, ये नहीं कि केवल भारत में ही है। तो जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, आप देख रहे हैं अभी राफेल सौदे को लेकर के कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, काफी कुछ हंगामा हो रहा है, अखबारों में काफी समय से आ भी रहा है, राइट। सरकार अपनी तरफ से ये बात स्पष्ट करने की कोशिश कर रही है। तो अब एक जनहित याचिका दायर कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन ध्यान रखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जो मांगा है वो ये कहा है कि रक्षा सौदे की जो प्रक्रिया रही है, निर्णय लेने की खरीदी प्रक्रिया, बस उससे संबंधित जानकारी दीजिए, और वो भी बंद लिफाफे में दीजिए। ये नहीं कि आप ओपन कोर्ट में पब्लिक को बताएं। लेकिन उसके जो टेक्निकल पक्ष हैं, और टेक्निकल पक्ष ही सबसे ज्यादा सुरक्षा से जुड़े हुए पक्ष होते हैं, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि यहां सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टैंड लिया वो बहुत ही परफेक्ट स्टैंड लिया, मतलब एक राष्ट्र हित में जो लेना चाहिए वो लिया, और फिर वो जो न्यायिक सक्रियता की हम बात करते हैं ना, उस सीमा में रहते हुए ये निर्णय लिया है। याद रखिए दोस्तों कि इसमें जितने भी आरोप लग रहे हैं, उस आरोप के केवल दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। पहला कि ये जो सौदा है ये बहुत महंगा सौदा है, मतलब जो विमान खरीदे गए हैं वो बहुत महंगे रेट में खरीदे गए हैं। दूसरा ये है, इसमें दो पॉइंट हैं दूसरे में, और लेकिन दोनों एक दूसरे से जुड़े गए हैं, जुड़े हुए हैं, कि इसमें बेसिकली जो HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो बेंगलोर में है, जो हमारे विमान वगैरह भी बनाती है और दूसरी इस तरह से चीजें बनाती है, रक्षा उपकरण, HAL है ना। हम लोग जब ट्रेनिंग में थे, भारत दर्शन में गए थे, तो हम लोगों ने ये विजिट भी किया था, मुझे याद, HAL, उसको न देकर के जो सरकारी कंपनी है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, उससे जो जोड़ा गया है वो है अनिल अंबानी की कंपनी, रिलायंस डिफेंस। तो इस पर आपत्ति हो रही कि भाई आप सरकारी क्षेत्र की कंपनी को न दे करके एक ऐसी कंपनी को दे रहे हैं जो अभी अभी बनी है, जिसके पास इसका कोई अनुभव नहीं है, तो आप इसे स्पष्ट कीजिए कि ऐसा आपने क्यों किया। जबकि हाल जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, वो इससे पहले भले ही इस बारे में कुछ नहीं कर रही हो, लेकिन वो इस क्षेत्र में है, उसके पास अपने अनुभव है, और वो सरकारी कंपनी है। ये दो मेजर पॉइंट हैं जिसको लेकर के एक तरह से विवाद की स्थिति बनी हुई है। ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज आप भटक सकते हैं। मित्रों, एक एडिटोरियल कमेंट मैं आपको दैनिक भास्कर के और भी दूसरे अखबारों के हैं वो प्रोवाइड कर रहा हूं। एक संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण पर एक संस्था है जिस पर प्री एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया, शायद एक दो साल पहले। इस संस्था का नाम है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC, यूएनओ की संस्था है। रिपीट कर रहा हूं, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये आपको नाम याद होना चाहिए, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है जो पर्यावरण के बारे में अपनी रिपोर्ट देती रहती है। और उसने अभी चेतावनी दी है कि खासकर हम ये कह रहे हैं कि अब जो टेम्परेचर है बढ़ता जा रहा है, आपको मालूम है ग्रीन हाउस गैसेस के जरिए, इस पर आप बहुत कुछ जानते हैं, मुझसे ज्यादा जानते होंगे अगर आपके साइंस की बैकग्राउंड है। तो अभी तक यह रखा गया है कि नहीं, इसे अब ज्यादा से ज्यादा 2 डिग्री तक बढ़ाया जा सकता है। बस अगर इससे ज्यादा डिग्री टेम्परेचर बढ़ा पर्यावरण का, पृथ्वी का टेम्परेचर, तो तबाही मच जाएगी। लेकिन इन्होंने चेतावनी दी है कि नो 2 डिग्री, इट शुड बी 1.5 डिग्री, यानी कि 1.5 डिग्री तक ही इसकी वृद्धि होनी चाहिए। बस इससे अधिक वृद्धि हुई तो तबाही की स्थिति आ जाएगी। ये इसका मेन पॉइंट है, क्योंकि मैंने देखा कि 2 डिग्री 1.5 डिग्री इसको लेकर के स्टूडेंट में हो सकता है कि थोड़ा कंफ्यूजन हो जाए, तो इसे मुझे स्पष्ट करना था। और बकायदे पर्यावरण पर आप लोग काफी कुछ जानते भी हैं, मैं एडिटोरियल कमेंट भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, जब आप उसे थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगी, मेरी जरूरत यहां बिल्कुल भी नहीं है। तो बेहतर है मित्रों कि अब मैं सीधे सीधे आपके मुख्य विषय पर आ जाऊं। और दोस्तों अब जो आज का जो मुख्य विषय है, उस मुख्य विषय में मैं आपसे कॉरपोरेट प्रशासन के बारे में बात करने जा रहा हूं। कॉरपोरेट प्रशासन, अब आप देखिए कि इनफैक्ट ये कॉरपोरेट प्रशासन क्या है और इसका संदर्भ क्या है और क्यों मैंने इस विषय को चुना है। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि मैं आज आपको बिजनेस स्टैंडर्ड का एक आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं जिसका शीर्षक है बोर्ड रूम के फर्नीचर से भी स्थायी हैं स्वतंत्र निदेशक। इसे आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे लगा कि स्टूडेंट थोड़े से भ्रमित हो सकते हैं, या यूं कह लीजिए कि शायद हो सकता है कि वो अच्छे से ना समझ पाए। हाँ, जिनकी इकोनॉमिक्स की बैकग्राउंड है, इंडस्ट्री की बैकग्राउंड है, वो तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, लेकिन हर की ऐसी नहीं होती है। अभी आपको मालूम है कि एक कंपनी जिसको लेकर के खूब बवाल मचा हुआ है, ILNFS, जिसके बारे में हम लोगों ने शुरू में बात भी की है ना, ये बुरी तरह से फेल हो गई है और इसके ऊपर दुनिया भर का कर्जा हो गया है, तो इसको लेकर के तरह तरह की बातें हो रही हैं। उसी संदर्भ में ये आर्टिकल लिखा गया उसको बेस बनाकर। देखिए दरअसल होता क्या है कि कंपनी है एक, जो बड़ी कंपनी होती है, तो अगर उस कंपनी ने शेयर मार्केट में दाखिला ले लिया है, यानी कि अपने शेयर जारी कर दिए हैं, तो इसका मतलब है कि उसमें पब्लिक भी भागीदार बन गई है। शेयर का मतलब यही है कि पब्लिक भी उसका हिस्सा बन गई है। जब अब पब्लिक भी हिस्सा बन गई है, पब्लिक ने शेयर खरीद करके उसमें साझेदारी कर ली है, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जो पब्लिक का इंटरेस्ट है, यानी कि ब्याज नहीं, पब्लिक के जो हित है, उसकी रक्षा कौन करेगा, कौन करेगा उसकी रक्षा? तो उसके लिए बकायदे कानून बनाए गए हैं और ये व्यवस्था की गई है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को आप समझ लीजिए कि एक तरीके से सरकारी भाषा में कहें तो कैबिनेट, जो सारे डिसीजन लेती है, उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन कौन लोग होते हैं, बट नेचुरल है कि जो मालिक है वो तो होगा ही, इसके बाद जिनके एक परसेंटेज, एक फिक्स परसेंट तक की होल्डिंग उस कंपनी में होती है, जैसे मान लीजिए कि जिसके पास भी 10% शेयर है टोटल के, तो बट नेचुरल है कि 10% तो बहुत हो गया, तो वो अपना एक व्यक्ति बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भेज सकता है, भेजता है, ताकि चूंकि उसकी बहुत बड़ी पूंजी लगी हुई है तो उसका जो हित है वो प्रोटेक्ट हो सके, निर्णय लेने में वो भागीदार इसलिए बनाया जाता है। लेकिन अब जनता है, जनता की तो बहुत थोड़ी थोड़ी होल्डिंग है, नहीं के बराबर है, किसी के पास 1000 शेयर है, किसी के पास 100 शेयर है, तो अब इनके हितों की रक्षा कौन करे? तो इनके हितों की रक्षा करने के लिए स्वतंत्र निदेशक अपॉइंट करने की बात है, यानी कि वो किसी कंपनी की तरफ से नहीं होंगे, किसी बैंक की तरफ से नहीं होंगे, वो बिल्कुल फ्री होंगे, यानी कि सही मायने में वो जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे, राइट? अब हो क्या रहा है, कॉरपोरेट प्रशासन की हम बात कर रहे हैं, देखिए है ना, तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो प्रशासन का ही काम कर रहा है, वो कॉरपोरेट के प्रशासन को देख रहा है, जो मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात कही। तो मित्रों ये जो स्वतंत्र निदेशक होते हैं, नो डाउट कि जो स्वतंत्र निदेशक अपॉइंट किए जाते हैं उनकी बैकग्राउंड अच्छी होती है, इंडस्ट्री के अनुभवी होंगे या जो भी है, इस तरह का काम उन्होंने किया हुआ होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट यह होता है कि इनके अपॉइंटमेंट में जनता की कोई भागीदारी नहीं होती है, और जनता की भागीदारी होना थोड़ा सा व्यावहारिक रूप में मुश्किल भी है। तो जो मालिक होता है वही स्वतंत्र निदेशक अपॉइंट कर देता है, तो किनको अपॉइंट कर देता है, उसका अपना दोस्त होगा या उसका अपना कोई सहयोगी होगा या किसी कंपनी का पुराना सीईओ होगा, उनको स्वतंत्र निदेशक बना करके बैठा देते हैं। अब ये बन गए, अब ये बने हैं पूरी तरह से मालिक, या कह लीजिए जो उसके हेड हैं, चेयरमैन हैं या मैनेजिंग डायरेक्टर हैं या उसके सीईओ हैं, उनकी कृपा के आधार पर। तो ये जो बन जाते हैं स्वतंत्र निदेशक, ये कहा गया है कि ये इनका कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता, इनका एक ही काम होता है कि जो चेयरमैन कह रहा है, जो सीईओ कह रहा है, बस मुंडी हिला दो कि हाँ ठीक है। उनको कोई लेना देना नहीं होता है, वो जिम्मेदारी ये नहीं समझते हैं कि पब्लिक के हितों को देखना आपका धर्म है, कर्तव्य है, उसके लिए आपको लाया गया है, वो ऐसा नहीं करते। इसीलिए देखिए जो शीर्षक रखा है, बोर्ड रूम के फर्नीचर से भी स्थायी है स्वतंत्र निदेशक, मतलब एक बार किसी को अपॉइंट कर दिया गया तो 10 साल 20 साल 30 साल तक वो स्वतंत्र निदेशक बने हुए हैं। फर्नीचर तो 10 साल में कम से कम आप बदल देते हैं, ये कहने का मतलब है कि जो बोर्ड रूम का जो फर्नीचर होगा वो फर्नीचर 10-15 साल में बदल दिए जाते हैं, लेकिन जो स्वतंत्र निदेशक हैं 10-15 साल में भी नहीं बदले जाते, एक बार बन गए हैं तो बन गए हैं, क्योंकि वो बेसिकली जो उसके हेड हैं उसके हां में हां मिला रहे, तो वो कोई भी निर्णय ले रहे हैं हर कोई मान रहा है, और नतीजा ये होता है कि पता लगा कि वो कंपनी धीरे 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 बर्बादी की तरफ बढ़ गई है। और मुझे लगता है कि ये जो मैंने अभी थोड़ी सी बैकग्राउंड आपको बताई है, इसको अगर आप थोड़ा सा ध्यान में रख करके चलेंगे तो जो आर्टिकल मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, यह आर्टिकल आपके दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, इसे आप बहुत आराम से समझ लेंगे, इसको समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो मित्रों, इसीलिए मैंने कॉरपोरेट प्रशासन की बात कही। यहां मैं आपको थोड़ी सी ये बात भी बताना चाहूंगा कि जब आप अपने सिविल सर्विस मेंस का सिलेबस देखेंगे तो उसमें बकायदे कॉरपोरेट गवर्नेंस दिया हुआ है, कॉरपोरेट गवर्नेंस। और याद रखिए कि जो कॉरपोरेट गवर्नेंस जो दिया हुआ है टॉपिक, ये आपके सेकेंड पेपर का नहीं है या थर्ड पेपर का नहीं है, यानी कि इकोनॉमिक्स का पेपर का नहीं है, ये फोर्थ पेपर का है, एथिक्स के पेपर का, इंटीग्रिटी के पेपर का है। सोच के देखिए, कॉरपोरेट गवर्नेंस यानी कि कॉरपोरेट अच्छे तरीके से काम करें, कॉरपोरेट गवर्नेंस उसके लिए सरकार ने कुछ इंतजाम किए हैं, वो कॉरपोरेट गवर्नेंस है। लेकिन यहां जो हम कॉरपोरेट प्रशासन की बात कर रहे हैं वो कॉरपोरेट गवर्नेंस नहीं है, उसका एक छोटा सा हिस्सा अलग उसी जैसा है, लेकिन याद रखिए कि वो काम कैसे कर रहे हैं। गवर्नेंस का मतलब है कि ऐसे करना चाहिए, कॉरपोरेट गवर्नेंस का यह मतलब हुआ कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, सुशासन जिसे आप कह लीजिए। लेकिन प्रशासन का मतलब है कि वो कर क्या रहे हैं, इनफैक्ट सही मायने में हो क्या रहा है, इसीलिए इसका टाइटल मैंने रखा है कॉरपोरेट प्रशासन। तो इस अंतर को ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब अपने हिसाब से देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, धनराज सिंह इलाहाबाद से, विकास शर्मा, जितेंद्र आर्य एयरफोर्स से हैं, दीपक कुमार विश्वास सागरपुर छत्तीसगढ़ से हैं, रितेश साहू बैतूल मध्य प्रदेश से हैं, इमरान अहमद बलिया उत्तर प्रदेश से, संदीप कुमार लखनऊ से, प्रज्ञा गोस्वामी और श्वेता राज चंपारण बिहार से, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।